लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है वर्ष 2025 हेतु संत पापा फ्रांसिस का दिया गया 40वां संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा फ्रांसिस ने वर्ष 2025 के 40वां संदेश में कहा कि हम विश्वास और आशा में माथे पर राख लगाते हुए पश्चाताप की धर्म विधि का अनुष्ठान करते और 40वां काल की वार्षिक यात्रा शुरू करते हैं। कलीसिया हमारी माता और शिक्षिका हमें अपने हृदयों को ईश्वर से मिलने वाली कृपाओं हेतु खोलने का निमंत्रण देती है, जिससे हम परम आनंद में पास्का पर्व अर्थात मृत्यु पर यीशु ख्रिस्त के विजय को मना सकें, जिसे संत पौलुस घोषित करते हुए कहते हैं, मृत्यु का विनाश हुआ, विजयी प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी जीत, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। वास्तव में यीशु ख्रिस्त जो क्रूस पर चढ़ाए गए और पुनर्जीवित हुए हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है और पिता के द्वारा हमारे लिए की गई प्रतिज्ञा की आशा जो प्रिय पुत्र में पहले ही पूरी हुई है, जो हमारे लिए अनंत जीवन है। श्रोताओ, 40वां के इस काल में जैसे कि हम जयंती वर्ष की कृपा में अपने को सम्मिलित करते हैं, संत पापा फ्रांसिस आशा में एक साथ तीर्थ यात्रा करते हुए व्यक्तिगत और सामुदायिक मन फिराव हेतु अपने चिंतन प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम तीर्थ के बारे में संत पापा कहते हैं कि इस जयंती का शीर्षक है आशा के तीर्थ यात्री। यह हमें चुनी हुई इसराइली प्रजा की लंबी यात्रा की याद दिलाती है, जिसे वे प्रतिज्ञात देश की ओर करते हैं। गुलामी से स्वतंत्रता के इस कठिन मार्ग में हम ईश्वरीय इच्छा और उनके निर्देशन को पाते हैं, जो अपनी प्रजा को प्रेम करते और उनके प्रति सदैव विश्वासी बने रहते हैं। उन भाई बहनों के बारे में विचार किए बिना जो हमारे समय में अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और हिंसा से भागते हुए अपने लिए और अपने प्रिय जनों के लिए एक बेहतर जीवन की चाह रखते हैं, निर्गमन ग्रंथ के दृश्यों पर विचार करना हमारे लिए कठिन लगता है। परिवर्तन का पहला निमंत्रण हमारे लिए इस भांति इस बात की अनुभूति से आती है कि हम सभी इस जीवन में तीर्थ यात्री की भांति हैं। हम में से हर कोई रुककर इस पर चिंतन करने को बुलाया जाता है, क्या मैं सचमुच में एक यात्रा कर रहा हूँ या मैं स्थिर हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ भय और अपनी निराशा भरी स्थिति के कारण या अपने आरामदायक स्थिति से आगे बढ़ने में आनाकानी करता हूँ, क्या मैं अपने पापों की स्थितियों और परिस्थितियों को अपने पीछे छोड़ने की चाह रखता हूँ जो मेरे सम्मान को खत्म करते हैं। संत पापा कहते हैं कि 40वां काल में यदि हम कुछ प्रवासियों या परदेशियों के जीवन पर चिंतन करते हुए उनके जीवन के अनुभवों के संग सहानुभूति रखना सीखते हैं और इस तरह ईश्वर की योजना को जानने की कोशिश करते हैं कि वे हमसे क्या चाहते हैं, जिससे हम पिता के निवास की ओर अपनी यात्रा को बेहतर बना सकें, तो यह हमारे लिए एक अच्छा अभ्यास होगा। दूसरे बिंदु एक साथ यात्रा करने के बारे में संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि कलीसिया अपने में एक साथ चलने हेतु बुलाई जाती है, जो सिनोडालिटी को व्यक्त करती है। ख्रिस्तीय एक दूसरे से अलग अलग चलने हेतु बुलाए नहीं जाते हैं, वे अकेले कभी नहीं चलने को कहे जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें अपने में खोए रहने को प्रेरित नहीं करते हैं, बल्कि अपने जीवन की सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए ईश्वर और अपने भाई बहनों की ओर चलने को प्रोत्साहित करते हैं। एक साथ चलने का अर्थ हमारे लिए एकता को मजबूत करना है, जहां हम ईश्वर के संतान स्वरूप एक बनाए गए हैं। इसका अर्थ एक दूसरे की बगल में चलना है, दूसरे को बिना धक्का दिए या कुचले, बिना किसी आडंबर या ईर्ष्या के, किसी को अपने से अलग किए बिना या पीछे छोड़ते हुए। आइए हम सभी एक दिशा में चलें, एक लक्ष्य की ओर, एक दूसरे के प्रति प्रेम और धैर्य में बने रहते हुए। संत पापा फ्रांसिस अपने पत्र में लिखते हैं कि इस चालीसा काल में ईश्वर हमें अपने जीवन की परख करने को कहते हैं कि हम अपने परिवार में, कार्यस्थल में और जहां हम समय व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के संग चलने के योग्य होते हैं, उन्हें सुनते, अपने में खोए रहने और केवल अपनी जरूरतों तक ही सीमित रहने के प्रलोभन से बाहर निकलते हैं। हम धर्माध्यक्ष गण, पुरोहित, समर्पित लोग और लोक धर्मी ईश्वर की उपस्थिति में अपने से पूछें कि क्या हम ईश्वर के राज्य की सेवा में एक दूसरे के संग सहयोग करते हैं। क्या हम अपने ठोस कार्य के माध्यम दूसरों का स्वागत हेतु खुला रहते हैं। हम दूसरों को समुदाय का अंग होने का अनुभूति प्रदान करते या हम उन्हें अपने से दूर करते हैं। इस भांति यह हमारे लिए अपने में परिवर्तन लाने का बुलावा है, सिनोडालिटी हेतु एक बुलावा। आशा में एक साथ चलने पर प्रकाश डालते हुए संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हमें एक प्रतिज्ञा की गई है। आशा हमें कभी निराश नहीं करती है। यह हमारे लिए जयंती वर्ष का मूलभूत संदेश है। यह हमारी चालीसा यात्रा का केंद्र बिंदु हो, जो हमें पास का विजयी की ओर अग्रसर करता है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें हमें अपने विश्व प्रेरितिक पत्र स्पेस साल्वी में बतलाते हैं, मानव को शर्तहीन प्रेम की जरूरत है। उसे अपने में यह निश्चितता की आवश्यकता, जो कहती है, ना ही मृत्यु, ना जीवन, ना दूतगण, ना ही सिद्धांत, ना वर्तमान की चीजें, ना ही भविष्य में होने वाली घटनाएं, ना ही शक्तियां, ना ऊंचाइयां, ना ही गहराइयां और ना ही सृष्टि की कोई भी चीज हमें यीशु ख्रिस्त ईश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। यीशु ख्रिस्त मेरी आशा हैं, जो मृतकों में से जी उठे हैं। वे जीवित हैं और महिमा में राज्य करते हैं। मृत्यु विजयी में बदल गई है और ख्रिस्तियों का विश्वास और उनकी महान आशा मसीह के पुनरुत्थान पर टिकी हुई है। संत पापा कहते हैं कि यह हमारे लिए आशा में बने रहते हुए परिवर्तन का एक बुलावा है, जहां हम ईश्वर पर भरोसा करते हुए अनंत जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। हम स्वयं से पूछें, क्या मैं इस बात से विश्वस्त हूं कि ईश्वर मेरे पापों को क्षमा करते हैं, या क्या मैं इस भांति व्यवहार करता हूं कि मैं स्वयं को बचा सकता हूं? क्या मैं मुक्ति की प्रतीक्षा करता हूं और इसके लिए ईश्वर की सहायता पर भरोसा रखता हूं? क्या मैं उस आशा का ठोस अनुभव करता हूं जो मुझे इतिहास की घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम बनाती है और मुझमें न्याय और भाईचारे के प्रति प्रतिबद्धता, हमारे सामान्य घर की देखभाल करने और इस तरह से कार्य करने की प्रेरणा देती है कि कोई भी व्यक्ति खुद में अलग थलग महसूस ना करे। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा फ्रांसिस लिखते हैं कि हम यीशु ख्रिस्त में पिता के प्रेम के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जो हमें आशा में बनाई रखती है, जिसके फलस्वरूप हम निराश नहीं होते हैं। आशा आत्मा का निश्चित और सुदृढ़ लंगर है। यह कलीसिया को सबों के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रेरित करती है, जिसे हर कोई बचाया जाए और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए यीशु से अपनी एकता स्थापित करे, जो स्वर्ग में उनके वर हैं। अविला की संत तेरेसा की यही प्रार्थना थी, मेरी आत्मा आशा कर, तुझे ना तो दिन का पता है और ना ही समय का, अपनी सतर्कता में देख, सारी चीजें तुरंत खत्म हो जाती हैं, यहाँ तक कि तेरी अधीरता निश्चित चीज के प्रति भी संदेह उत्पन्न करती है और बहुत कम समय को लंबे समय में बदल देती है। कुंवारी मरियम आशा की माता हमारे लिए निवेदन करें और चालीसा की यात्रा में हमारे संग रहें।
एक बार फिर से आया हूँ, गुनाहों की चादर लाया हूँ, धो दे प्रभु ये निवेदन, दे दे मुझे अपना दर्शन। जीवन ले आया हूँ, मैला मेरा मन लाया हूँ, हिंसा सफेद हो मन, दे दे मुझे अपना दर्शन।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार सोमवार को पोप फ्रांसिस को बलगम जमा होने के कारण तेज सांस अपर्याप्तता की दो घटनाओं का सामना करना पड़ा। दोनों बार बलगम को बाहर निकाला गया। सोमवार शाम को वैटिकन प्रेस कार्यालय ने पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य पर निम्नलिखित अपडेट जारी किए। पोप फ्रांसिस को तेज सांस अपर्याप्तता की दो घटनाओं का सामना करना पड़ा, जो श्वास नली के अंदर बलगम के काफी मात्रा में संचय होने और ब्रोंकाइज़म के कारण हुआ। इसके लिए दो ब्रोंकोस्कोपी की गई। सोमवार दोपहर में नॉन इन्वेसिव यांत्रिक वेंटिलेशन फिर शुरू किया गया। पोप हर समय सतर्क और उन्मुख हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। पोप के खून जांच की रिपोर्ट अपरिवर्तित है और पता चलता है कि उनमें उच्च श्वेत रक्त कोशिका की अधिकता नहीं है और उन्हें कोई नया संक्रमण नहीं हुआ है। बलगम का संचय केवल पोप के पहले से मौजूद निमोनिया का परिणाम है। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बताया कि तीव्र सांस अपर्याप्तता की दो घटनाओं का कारण ब्रोंकियल नलिकाओं की प्रतिक्रिया थी, जो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जमा हुए बलगम को बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। इसलिए पोप के उपचार की स्थिति जटिल बनी हुई है और सोमवार दोपहर जैसी स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। लेकिन वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार पोप फ्रांसिस सोमवार को दो बार श्वसन संबंधी समस्या से पीड़ित होने के बावजूद पूरी रात अच्छी तरह सो पाए। वे 14 फरवरी से रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं। वैटिकन के राजदूतों ने सोमवार शाम 6 बजे रोम के जर्मन भाषी गिरजाघर पौत्रात्मा के संत मरिया में पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य लाभ के लिए पावन ख्रिस्त्याग में भाग लिया। ख्रिस्त्याग में वैटिकन से मान्यता प्राप्त 20 से अधिक देशों के राजनयिकों ने भी हिस्सा लिया। पौत्रात्मा के संत मरिया के रेक्टर माइकल मैक्स ने वैटिकन न्यूज को बतलाया, मुझे लगता है कि यह दिलों को एक आम दिशा देने का बहुत ही सुंदर और गहरा प्रयास था, और अगर राजनयिक कोर के रूप में दिल कभी कभी सांस्कृतिक भाषाई रूप में इस दुनिया में अलग अलग लय से धड़कते हैं और जब वे पोप के लिए प्रार्थना में एक साथ आते हैं तो उन्हें एक आम दिशा मिलती है, और मुझे विश्वास है कि इससे उन लोगों को ताकत मिलती है जो प्रार्थना करते हैं और उन लोगों को भी जिनके लिए वे प्रार्थना करते हैं। ख्रिस्त्याग इतालवी, जर्मन और लैटिन भाषा में अर्पित किया गया। रोम के केंद्र में स्थित जर्मन भाषी गिरजाघर में आयोजित प्रार्थना में
अन्य लोगों के अलावा स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, आर्मेनिया, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और अंगोला के राजदूतों ने भाग लिया। उनके साथ तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया और हैती के राजदूत भी मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता कर रहे रेक्टर ने अपने प्रवचन में कहा, पोप फ्रांसिस के रूप में हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो विशेष रूप से बीमार लोगों और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के करीब हैं। प्रार्थना चिंताग्रस्त और परेशान हृदयों को आशावान बना देती है। अफवाह और अटकलों की बौछार के विपरीत प्रार्थना एक व्यापक और गहरी धारा बनाने में सक्षम है जो शुष्क धरती को सींचती है और नई उर्वरकता को संभव बनाती है। यह धारा हमें और उन्हें भी अपने साथ ले जाती है जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिछले एक सप्ताह से हर शाम 9 बजे संत पेत्रुस महा के जगर के प्रांगण में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की जा रही है। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने सोमवार को लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा से मुलाकात की जो रोम में देश की राष्ट्रीय जयंती तीर्थयात्रा में भाग ले रहे हैं तथा उन्होंने यूक्रेन में शांति की संभावनाओं के साथ साथ लिथुआनिया समाज में ख्रिस्ती धर्म के योगदान पर चर्चा की। लिथुआनिया राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय जयंती तीर्थयात्रा में भाग लेने के लिए रोम में हैं, उनके वैटिकन राज्य सचिव से मुलाकात के दौरान वैटिकन विदेश सचिव महादमदस पॉल रिचर्ड गलाघर भी उपस्थित थे। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार उनके बीच मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही जिसमें अच्छे और फलदायी द्विपक्षीय संबंधों पर संतोष व्यक्त किया गया तथा लिथुआनियाई समाज में ख्रिस्ती धर्म के सकारात्मक योगदान पर भी प्रकाश डाला गया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रश्न पर भी ध्यान केंद्रित किया, विशेषकर यूक्रेन में शांति की संभावनाओं के संदर्भ में। पोप फ्रांसिस जब रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं, उनके स्थान पर प्रेरित दंड मोचन विभाग के प्रमुख कार्डिनल अंजेलो दी डोनातिस एवेंटाइन हिल पर राकबोध की धम्म विधि की अध्यक्षता करेंगे। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बीते शुक्रवार को घोषणा की कि कार्डिनल अंजेलो दी डोनातिस इवेंटाइन हिल पर राकबोध की पारंपरिक धम्म विधि की अध्यक्षता करेंगे। संत पापा जॉन 23वें द्वारा पुनः जागृत एक प्राचीन रोमन परंपरा को बनाए रखते हुए पोप आमतौर पर इवेंटाइन हिल पर संत सबीना महागिरजाघर में पश्चाताप शोभा यात्रा करने से पहले संत अंसेलम गिरजाघर में राकबोध की धम्म विधि शुरू करते हैं। चूंकि पोप फ्रांसिस डबल निमोनिया के इलाज के लिए रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए उन्होंने इस वर्ष के समारोह के लिए कार्डिनल दी डोनातिस को अपनी जगह अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया है। परमधम पीठ धम्म विधिक समारोहों के अध्यक्ष महाधर्मदक्ष जोवानी डिएगो रवेली के एक संदेश के अनुसार राकबोध की धम्म विधि संत अंसेलम में 4:30 बजे शुरू होगी, जिसके बाद जुलूस के साथ संत सबीना गिरजाघर की ओर प्रस्थान होगा। जुलूस में कार्डिनल महाधर्मदश संत अंसेलम के बेनेडिक्ट मठवासी, संत सबीना के डोमिनिकन फादरगण और कुछ विश्वासी भाग लेंगे। जुलूस के अंत में संत सबीना गिरजाघर में पौत्र क्रिस्त्याग अर्पित किया जाएगा। मंगोलिया के उलन बतार के प्रेरितिक प्रीफेक्ट कार्डिनल जोर्ज मरेंगो ने बतलाया कि जयंती कार्यक्रम का मुख्य प्रयास सभी लोगों को शामिल करना, प्रशिक्षित करना और उदारता पर जोर देना है। 29 दिसंबर 2024 को मंगोलिया की राजधानी उलन बतार में जयंती वर्ष 2025 का उद्घाटन एक ऐसे भव्य समारोह के साथ शुरू हुआ जिससे दुनिया के सबसे सुदूर इलाकों में भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।